उपस्थित सज्जनों, देवियों, हम पिछले बार चर्चा कर रहे थे सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे चैप्टर में। स्वामी जी ने लिखा कि केवल नियम करने से नहीं, नियम मतलब जो जो रिचुअल्स हैं, जो रिलीजियस ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ उसको करने से काम नहीं चलेगा, उससे पहले आपको यमों की साधना करनी चाहिए। और वो यम क्या है, उसी की चर्चा हम कर रहे थे। योग दर्शन में पांच यम मतलब रिस्ट्रेंट्स की बात है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हमने पिछले बार अहिंसा की चर्चा की थोड़ी बहुत, तो उसको समराइज करके फिर आगे बढ़ेंगे जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। अहिंसा का अर्थ था किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा ही न रखना, किसी से शत्रुता न करने की इच्छा न रखना ही अहिंसा है। और पिछले बार हमने इस पर काफी चर्चाएं की, पर सार रूप में यह है कि जितने तरह के भी हमारे नैतिकताएं हैं, वह जो भी हमारे एथिक्स हैं, मोरालिटीज हैं, उन सबकी जो टेस्ट है, जो जो परीक्षा है, वो अहिंसा के द्वारा ही हो सकती है। मीन्स हम सच बोलते हैं, पर अगर वो सच हम इसीलिए बोलते हैं कि किसी को चोट पहुंचे, तो ये कोई सच नहीं है, वो एक तरह का सिन है, पाप है। आप किसी का भला करते हैं, पर किसी के उपकार करने के पीछे अगर आपका इंटेंशन है कि उसको हर्ट करना, तो वो उपकार भी आपको आपका एक तरह के पाप है। तो जो भी काम हम करें जीवन में, जो भी एथिक्स हम अपने लाइफ में अप्लाई करें, वो सब अहिंसा के द्वारा छानी हुई होनी चाहिए, तभी उसकी उसका जो असलियत है, जो मुख्य लक्ष्य है, वो पूरा होता है। एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं। एक देश का मुखिया, जो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उसको ये सनक लग जाए, मतलब कोई एक्चुअल कोई बिहेवियर चेंज नहीं है, उसको ये सनक हो, एक पागलपन हो कि मैं सन्यासी जैसा बिहेव करूंगा, साधु सन्यासी जैसा बिहेव करूंगा, मतलब मैं किसी को सजा नहीं दूंगा, आई विल नॉट पनिश एनीबडी, क्योंकि मैं बड़ा साधु संत टाइप का आदमी हूं, मैं सच बोलूंगा, मैं हमेशा सबके प्रति दया भाव रखूंगा। आपको लगता है आप जिस देश में रहते हैं, अगर उस देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर ऐसा कुछ शपथ ले ले, तो आप उस देश में रहना पसंद करेंगे? हो सकता है पसंद करें, आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल को सजा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो पनिशमेंट के खिलाफ है, वो हिंसा है, और वो हिंसा नहीं करना चाहता है, वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो दया भाव रखना चाहता है। तो जब आपका एडमिनिस्ट्रेटर साधु बन जाए, तो हमें आपको देश छोड़ देने की जरूरत पड़ती है। और यही हम देखते हैं भारत जैसे देशों में, जहां जो जो टेररिस्ट होते हैं, जो खून करते हैं, उनके लिए हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनका बड़ा यही कहना होता है कि ये आजकल जो नया चला है ह्यूमन राइट्स। अब दुनिया में ह्यूमन राइट्स का जो है, जो एक तरह का आजकल मूवमेंट चल रहा है, वो ह्यूमन राइट्स ह्यूमन के लिए नहीं है। जो इनह्यूमन बिहेवियर करते हैं, जो जंगलियों के तरह व्यवहार करते हैं, उनको बचाने के लिए ये एक सेफ गार्ड से, मतलब अगर टेररिस्ट पकड़ा जाए, उसे प्यार से बिहेवियर करो, उनको बिरयानी खिलाओ, उन पर केस चलाओ, और जब जरूरत पड़े अभी जो दूसरे टेररिस्ट जब तक तैयार ना हो जाए उसको जेल से भगवाने के लिए, तब तक आप उसको पालते रहो। पर आम तौर पर कोई भी आम आदमी गलती से भी पकड़ा जाए उसको आप कितना टॉर्चर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अखबारों में टेररिस्ट के बारे में न्यूज आता है और हमें यह साबित करना है कि हम बड़े ह्यूमन हैं, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी भरी हुई है, क्योंकि आपकी ह्यूमैनिटी से करोड़ों लोगों को नुकसान होता है तो आपकी ह्यूमैनिटी एक तरह का जंगलीपन है, वो उससे ना आपको कुछ अंदरूनी कुछ सुख मिलने वाला ना समाज को कुछ फायदा होने वाला है। इसीलिए आपका हर वो अच्छाई अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए है, नुकसान पहुंचता है तो आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है कि सचमुच आपकी अच्छाई अच्छा है क्या। उस दिन हमने इस बात को कहकर खत्म किया था, महाभारत में भीष्म जिनको हम बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया अपने पिता के सामने कि मैं जिंदगी भर कभी भी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि उनके जो पापा थे और उनकी जो नई जो 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 सेकेंड या थर्ड वाइफ जो आई थी उसके कुछ शर्त थे जिनको वो शादी करना चाहते थे उनके पापा, और वो महिला के कुछ शर्त थे, वो शर्त पूरा नहीं होगा तो वो शादी नहीं करेगी, और शादी नहीं करेगी तो उनके पापा दुखी रहे क्योंकि उनको जिसे प्यार करते थे उनको नहीं मिला, तो बेटे ने अपने बेटा होने का फर्ज निभाने के लिए कुछ प्रॉमिस किया। शर्त ये थी कि मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, शादी इसीलिए नहीं करूंगा कि मैं शादी करा तो मेरा बच्चा भी राजा होने का दावा सोच सकता है, इसलिए शादी भी नहीं करूंगा, और तीसरा था कि जो भी सिंहासन पर बैठे जो भी राजा बने मैं उसका साथ दूंगा, और उन्होंने जिंदगी भर निभाया, और हम उनको बड़ा बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं और हमेशा कहते हैं जो अपने प्रॉमिस को निभाता है हम उसको भीष्म कहते हैं। पर क्या आपको पता है इस अच्छाई का रिजल्ट क्या हुआ? महाभारत की लड़ाई का मूल जो रूट था यही था, लाखों करोड़ों लोग मरे क्योंकि भीष्म अपनी प्रॉमिस को नहीं तोड़े। दुर्योधन राजा बना, उनको साथ देना था, दुर्योधन ने पब्लिक में अपनी सिस्टर इन लॉ को या भाभी को साथ बदतमीजी की तो भी भीष्म ने कहा मैं क्या करूं, मैं अपनी प्रॉमिस से बंधा हुआ हूं कि जो राजा है मैं उसका साथ दूंगा। जितनी सारे दुर्योधन और उसके ग्रुप ने गलतियां की भीष्म उसके साथ दिए, क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस से बंधा हुए थे। इतना बड़ा आपकी इतने शुद्ध और इतना पवित्र प्रतिज्ञा है, पर मरते समय इस गिल्टी फीलिंग के साथ भीष्म मरे कि मैं जिंदगी भर गलत लोगों के साथ देता रहा। अगर भीष्म अपने प्रतिज्ञा तोड़ देते तो वो बदनाम होते कि आप अपने प्रतिज्ञा तोड़ दी, पर वो लाखों लोगों को लड़ाई से मरने से बचा सकते थे, लड़ाई की नौबत ही नहीं आती, भीष्म अपने आप में इतने ताकतवर थे कि सभी सैनिकों को मार सकते थे, दुर्योधन का साथ नहीं देते तो लड़ाई भी नहीं होती, द्रौपदी के कपड़े उतारते समय रोकते तो भी लड़ाई बंद होती, कुछ भी कहीं भी वो अपनी प्रॉमिस तोड़ सकते थे। मेरी बात समझ में आई? भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा से भीष्म बन गए, महान बन गए, पर उनकी महानता के कारण देश को समाज को बड़ा नुकसान होना पड़ा। जब इसीलिए एक सबक है, जब भी आप कोई चीज प्रॉमिस करे उसकी पॉजिटिव्स नेगेटिव क्या आगे जाकर होने वाले हैं उनको पहले से सोच लें। ऐसा कोई प्रॉमिस ना करे जो आप निभा ना सकें, या अगर आप जिद्दी पकड़ के निभाने लगे और आपके घर बर्बाद हो जाए
समाज बर्बाद हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, पर आप अपना प्रॉमिस निभाते रहे, ये कोई मतलब की बात नहीं। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपकी जीवन में जो कुछ भी आप नैतिकताएं पालें, उसकी जो परीक्षण है, जो उसका एग्जामिनेशन है कि आप सही है या गलत है, हमेशा देखिए इससे किसी को किसी की हिंसा तो नहीं होती है, अगर होती है तो वो आपकी चीजें भी गलत है। पतंजलि कहते हैं अगर आप अहिंसा की सिद्धि कर लेते हैं, मतलब अगर ये अहिंसा की जो हैबिट है, अगर आप उसको अपना सेकेंड नेचर बना देते हैं, सेकेंड नेचर का मतलब होता है कि आपको कोई मारे तो भी अब आपके अंदर कोई गुस्सा आ ही नहीं रहा है, अगर ऐसी स्थिति में आप पहुंच गए, अहिंसा को पालन करने में आपकी इतनी सिद्धि हो गई, तो क्या होगा? तो कहते हैं अब आपके आसपास कोई व्यक्ति अगर आए, व्यक्ति हो जानवर हो कोई भी अगर आए, तो उसके अंदर जो खुंखारपन है, जो 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 मारने की या चोट पहुंचाने की जो भावना है, वो अपने आप खत्म हो जाती है। As the habit of ahimsa being confirmed, hostilities are given up in his presence. जैसे हम देखते हैं पुराणों में, पुराण की जो कहानियां आप देखते हैं ऋषि मुनियों की, उसमें क्या होता है कि ऋषियों के जंगल में आप देखेंगे शेर भी वही है, बिल्ली भी वही है, कुत्ता भी वही है, सब एक जगह खेलते हैं। शेर और कुत्ता या बिल्ली, इनके जो आपस में जो रिलेशन है वो हॉस्टिलिटी की, वो एक दूसरे, शेर उनको खाना खाता है, पर जब वो आश्रम के परिवेश में होते हैं, जब हम कार देखते हैं वहां, वो एक दूसरे से प्रेम करते हुए मिलते हैं, आश्रम से बाहर जाने के बाद कुछ कर सकते हैं। ऐसे हम हिस्ट्री में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। महात्मा बुद्ध को देखिए, अंगुलीमाल की बड़ा फेमस कहानी है, अंगुलीमाल इतना बड़ा डाकू है जंगल में, और वो उसको ऐसे ऐसे उसको एडिक्शन हुआ था खून करने का, कि वो खून करके लोगों के अंगुलियां काट के उसको माला बना के पहनता था और उसको बड़ा सुकून मिलता था। वो एक एडिक्शन होता है, आज भी बहुत सारे लोगों को इस तरह के खून करने में मजा आने की प्रॉब्लम होता है, एक बीमारी है, और बड़ा खूंखार जानवर डाकू था। महात्मा बुद्ध और उनको उनके साथ जो जो साथी थे, उनको उसी जंगल से गुजरना था, लोगों ने कहा कि इसी जंगल में अंगुलीमाल रहता है, आप मत जाइए। पर जो जो अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर चुका होता है, उसका पहला लक्षण होता है वो किसी से डरता नहीं है। वो जंगल में चलते गए, अंगुलीमाल आया, सब लोग डर के मारे भाग गए, पेड़ों में चढ़ गए, छुप गए, किसी के पसीने छूटने लगे, किसी के हार्ट बीटिंग बढ़ने लग गया। महात्मा बुद्ध अब भी शांत हैं, अंगुलीमाल मारने आ रहा है, महात्मा बुद्ध हंस रहे हैं। पास आते ही अंगुलीमाल को बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, तलवार या जो भी जो कटार लेकर के पास आते ही उसके हाथ कांपने लगे और अपने हाथ से तलवार या वो कटार गिर गया, वो बुद्ध के पैरों में गिर के रोने लग गया, रोता रहा रोता रहा। बुद्ध ने उसको उठाया, गले लगाया, और इस घटना के बाद अंगुलीमाल आगे जाकर बौद्धों का एक बहुत बड़ा सन्यासी बना। ऐसे आपको दुनिया के बड़े बड़े महापुरुषों के, साधु सन्यासियों के, जो रियल साधु सन्यासी हैं, उनके संग में आने से कितने खूंखार लोग बदल गए, इसी को कहते हैं। जब आप अहिंसा की सिद्धि करते हैं तो आपके आसपास के माहौल में भी हिंसा का सोच भी नहीं रहता है। तो ये पिछले बार की जो अहिंसा का टॉपिक था, हमने इसको थोड़ा सा समराइज किया। आज का जो विषय है अहिंसा के बाद अगला विषय है, जैसे आपने यम में दूसरा नियम है सत्य, अहिंसा के बाद सत्य, उस सत्य की चर्चा हम करेंगे। क्या है सत्य? आप प्रार्थना करते हैं, असतो मा सद्गमय, लीड मी फ्रॉम द फॉल्स टू ट्रूथ। आपको पता है जो जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसका जो जो मोटो एम्ब्लॉम में जो मोटो होता है वो है सत्यमेव जयते, ट्रूथ एलोन ट्रम्प्स, अकेला सत्य ही जीतता है। ये मुंडक उपनिषद की एक श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। ट्रुथ एलन ट्रूम्स नॉट फॉल्सहुड फॉर ट्रूथ द डिवाइन पैथ इज स्प्रेड आउट बाय व्हिच द सेजेस हुज डिजायर्स हैव बीन कंप्लीटली फुलफिल्ड रीच वेयर दैट सुप्रीम ट्रेजर ऑफ ट्रूथ रिजाइड्स। ये इंडिया के एम्ब्लॉम में लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्य क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे, पर हमारे यहां दो शब्द है जो थोड़ा स्क्रिप्चर्स या शास्त्रों को पढ़ते लिखते हैं उनको दो शब्द मिलता है, सत्य और रित। सत्य और रित में अंतर है कि दो तरह के सच हैं। रित का मतलब भी सत्य ही होता है, आप मंत्र पढ़ते ना, रितम च सत्यम च विद्धा तपसोध्यजायत। एक होता है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो कभी बदलता नहीं है। जैसे आग गर्म है, आप अगर 1,00,000 साल पहले भी बोले, मिलियंस ईयर्स पहले भी बोलेंगे होते तो भी आग गर्म ही कहेंगे, आगे से मिलियन साल के ईयर्स के बाद भी बोलेंगे तो भी आग गर्म ही होगा। पानी लिक्विड होता है, तरल होता है, आप इसको जब भी बोले, आज बोले, 10,000 साल पहले बोले, 10,000 साल बाद बोले, ये सच है, क्योंकि पानी की लिक्विडिटी नहीं बदलती है। अगर किसी कारण आप उसको बहुत ज्यादा ठंड के कारण बर्फ बनाते हैं या बहुत ज्यादा गर्म के कारण भाप बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, तो भी जब भी उसको मौका मिलेगा वो फिर दोबारा लिक्विड बन जाएगा, वो उसका स्वाभाविक धर्म है। आग का गर्म होना, पानी का ठंडा होना, ये रीत है। रीत का मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो कभी बदलता नहीं है, किसी भी समय नहीं बदलता। सूरज गर्म है, ये एब्सोल्यूट है, जब तक सूरज है वो गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं मिलेगा आपको। अगर मिलेगा तो वो सूरज, फिर उसको आप सूर्य नहीं कहेंगे। जब आप नया ज्ञान प्राप्त करते हैं आपका अज्ञान दूर होता है। इट्स अ रूल ऑफ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये कभी नहीं बदलता है। दुनिया में कुछ चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलती है, उसे हम कहते हैं रीतम, एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। सत्य क्या है, जो हम डेली लाइफ में जिसको यूज करते हैं वो सच सच है, थोड़ी देर के लिए, एक खास टाइम पर वो सच है, एक खास जगह पर सच है, पर इट्स नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। अगर आप मुझे पूछें, आप मुझे अगर 1 बजे पूछें, दिन के 1 बजे आपने खाना खाया है, तो मैं बोलूंगा हां ये सच है। पर अगर आप मुझे दिन में 5 बजे पूछेंगे, फिर मैं कहूंगा ना, क्योंकि तो दोबारा भूख लग रहा है। पर आपने तो बस 12 बजे खाना खाया था, अब 5 बजे कैसे बोल रहे हो नहीं खाया था, वो 12 बजे का खाना 5 बजे तक दोबारा भूख में आ जाता है। आपको पूछूं आपका एज क्या है, तो आप सच बोले भी, एज के बारे में थोड़ा सच बोलना मुश्किल होता है, खास करके महिलाओं को। मान लीजिए आपने सच बोला भी कि मैं 40 साल का हूं, पर मैं आपको नेक्स्ट ईयर पूछूं, फिर आप कहेंगे 41 साल का हूं, 41 इयर्स ओल्ड हूं, पर आप तो पिछले बार बोले थे 40 साल का हो। मतलब आप अपनी सच को बदल रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, पर आपका सच बदल रहा है, हर साल आपका एज बढ़ रहा है और आपको हर साल अपडेट करना पड़ रहा है। हर 4-5 घंटे के बाद आप बोलते हो मैंने खाना नहीं खाया। जब खाना खाते हो उसके 1-2 घंटे 3 घंटे के बीच पूछो तो कहते हो खाना खाया, 5-6 घंटे के बाद पूछो तो बोलते हो खाना नहीं खाया। ये क्या है, ये झूठ नहीं है, पर ये सब्जेक्टिव ट्रूथ है। वो ट्रूथ किसी पर टाइम और प्लेस के हिसाब से बदलता रहता है। हम अपने जीवन में जब कहते हैं कि हम सच बोलते हैं, उस सच का अर्थ होता है ऑनेस्टी, कि जो मेरे मन में है उसको मैं बोल रहा हूं, वो समय और स्थान के हिसाब से बदल सकता है पर परमानेंट नहीं होता है, इसी को कहते हैं सत्य। तो ये दो तरह के सत्य हैं। हम रीत की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक यूनिवर्सियल लॉ है, वो एक साइंस है। हम उसकी बात करेंगे जो सत्य, जो जिंदगी में हम रोज यूज करते हैं, जिसको हम ऑनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो सत्य क्या है, उसका डेफिनेशन है, जब आपका मन और आप जो बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं और जो बोल रहे हैं, अगर इन दोनों के बीच में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, कोई विरोध नहीं है, तो वो सच है। जो मन में है वो वाणी में हो, वो सच है। पर ये रियल लाइफ में बड़ा मुश्किल काम है कि जो मन में है वो मुंह पर हो। मन में तो ये है कि ये बकवास लेक्चर चल रहा है, पर मुंह में अगर ऐसा बोले तो बड़ा 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 अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो उन सबसे क्या निपटने के लिए, उसको कैसे हम डील करें, ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्र सिर्फ खोखले आइडियल्स बनाते हैं व आदर्श बनाते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी वो देते हैं। जैसे जैसे हमारी जैसी जैसी हमारी हमारी नैतिकताएं बढ़ेगी, हमारा मानसिक मन मजबूत होगा, वैसे वैसे हमारा मन और जो जो बोली है, जो भाषा है, वो दोनों एक होते जाएंगे। जितना दोनों में गैप रहेगा उतना उतना हम अंदर से खोखले होते जाएंगे। मतलब जितना खराब इंसान उतने उसके मन और वाणी में उतना अंतर दिखेगा, जितना इंसान की अच्छाई बढ़ेगी उतना मन और जो जो उसकी जो विचार और उसकी जो वाणी है, दोनों में आपको एक हार्मोनी एक एक एकपन दिखने लगेगा। पर प्रॉब्लम है कि जब हम सच बोलते हैं, सच बोलने का अर्थ है कि जो मैंने जैसा जाना उसको इसी रूप में बोलने का नाम सत्य है। जिस वस्तु को मैंने जैसा जाना या माना उसको उसी रूप में देखना ही सत्य है। पर जनरली जिन चीजों को आप सच समझते हैं या देखते हैं, वो ज्यादातर सच होता भी नहीं है। जैसे जो रिसर्चर्स हैं उनका मानना होता है कोर्ट में जितने भी आई विटनेसेस होते हैं वो नोटोरियसली अनरिलायबल होते हैं, बहुत खतरनाक तरीके से भरोसे के लायक नहीं होते हैं, कितना भी वो दिल से सच बोले। जो विटनेस है वो सच बोले तो भी रिलायबल नहीं है, ऐसा रिसर्चर्स का मानना है। मान लीजिए आपके घर में चोरी हुई बा किसी के घर में चोरी हुई, चोरी होने के जहां चोरी हुई उस रूम से किसी को निकलते हुए आपने देखा और आप आज ए विटनेस, आपने बताया कि मैंने इसको देखा, यही तो निकल रहा था उस समय, 5 बज के चोरी हुआ और 5 बज के 1 मिनट पर ये रूम से निकल रहा था। हम कभी चोरी होते हुए नहीं देखते, चोरी के बाद के इंसिडेंट को विटनेस बताता है। पर समस्या है कि जरूरी नहीं कि जिसने चोरी किया वो आपके सामने निकला हुआ हो। जो जब कोई क्रिमिनल केस होता है, कोई मारा जाता है, आप घर के अंदर घुसे, कोई मरा पड़ा है, उसके अंदर उसको गोली चली या छुरी चली, एक आदमी वहां छुरी पकड़ के खड़ा है, आपने कहा इसे नहीं मारा। अब दुनिया के ज्यादातर केस ऐसे ही होते हैं, हमारे घर में हो या बाहर हो, जिसके हाथ में बंदूक है, जिसके हाथ में छुरी है, और वही उसी को हम पहले पहले ही जो हमारा जो जो माइंडसेट होता है कि यही इसी ने मारा है। पर देखा जाता है 80% केस में वो सच नहीं होता है, मतलब जो आपने सच के रूप में जाना वही सच नहीं है, आप सच बोलते रहिए। इसीलिए शंकराचार्य का ये एक डेफिनेशन है कि सच सिर्फ इतने में काम नहीं चल जाएगा कि तुम जो सोचते हो, जो मानते हो, जो देखा सुना जाना उसी को बोल दिया तो वही सच है। ये बड़ा बड़ा रफ डेफिनेशन है, क्योंकि ज्यादातर हम जो देखते हैं या सुनते हैं बहुत सारे समय उसका कोई लेन देन नहीं होता है। जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो दूसरों की सुनी हुई, दूसरों के बारे में दूसरों की सुनी हुई बात को यकीन नहीं करते। ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का लक्षण होता है, मैनेजर का, कि किसने उसको किसके बारे में क्या कहा वो उसको बिलीव करे तो वो एक बैड मैनेजर है। उसको अपने तरीके से उसको पता करनी चाहिए, प्रूफ करनी चाहिए। और जब भी ऐसे, आपने इतिहास में हजारों सन की राजाओं के बारे में सुना होगा जो किसी के कहने पर किसी को मार देते थे, हटा देते थे। तो ये क्योंकि सच सिर्फ उतना नहीं है कि जो आपने सुना, जो देखा या जो जो आपने जो अनुमान किया, सच को बोलने के लिए सच क्या है जानना बड़ी जरूरी है। इसलिए कहते हैं जो वस्तु जैसा है उसको उसी रूप में जानना जरूरी है, फिर बोलना अलग बात है। यहां तक कि जो 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 ट्रेंड साइंटिस्ट होते हैं, जब इट इज टू बी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, डिस एग्री ऑन व्हाट दे सी एंड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर ओन रिजल्ट। जो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, कभी कभी वो खुद के सामने घटी हुई घटनाओं को भी यकीन नहीं करते। देखिए इतिहास में कितना बड़ा इस पर झगड़ा हुआ। आज से 1,500 साल पहले, 1,000-1,500 साल पहले यूरोप में ये चर्चा थी, ये एक विश्वास था, सच माना जाता था कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सेंटर है। सूर्य, चंद्रमा, बाकी जो स्टार्स हैं वो उसके चारों तरफ घूमते हैं। ये पहली नजर में झूठ नहीं है, क्योंकि वही तो दिखता है। पृथ्वी कभी घूमती हुई किसी को नहीं दिखती है, सूरज घूमता हुआ दिखता है, चांद घूमता हुआ दिखता है, स्टार्स बदलते हुए दिखते हैं। तो वही लोगों ने बोला, उनके उनके स्क्रिप्चर्स में वही लिखा गया कि भाई देखो पृथ्वी तो मेन है, सेंटर है, वो कहीं हिलता डुलता नहीं, घूमता नहीं है, ये घूमते हैं। जब टेलीस्कोप आया, जब गैलीलियो ने ये प्रूव किया कि नहीं, ये पृथ्वी ही घूमती है सूरज के चारों तरफ, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता है। अब इतना बड़ा झगड़ा हुआ, गैलीलियो को मारना पड़ा, उसको पनिशमेंट देना पड़ा। क्यों? क्योंकि सच बोलना अलग चीज है, सच जानना अलग चीज है। अगर आप सच को जानना नहीं चाहेंगे तो क्या होगा, आप हमेशा सच के नाम पर झूठ का साथ देते रहेंगे। आपके बच्चे के बारे में आपके पड़ोसी के बच्चों ने कहा कि इसने हमें मारा, इसने चोरी किया, और आपको अपने बच्चे से ज्यादा पड़ोसियों पर भरोसा है, तो आप बच्चे को थप्पड़ मार दिए। जब भी आप सच का पता ना लगा के एक्शन लेते हैं तो गलती होता है। कभी कभी बच्चे पर आपको ज्यादा भरोसा है, आप पड़ोसी के बच्चे को आपको बुरा समझते हैं। तो इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं अगर कभी तुम्हें सच बोलने का मन करे तो पहले यह परख लो कि तू जो बोल रहे हो सच है या सच जैसा दिखता है। इससे पिछले पहले बहुत पहले 9 नंबर स्लाइड है। हाँ बस यही है। तो अगला है यथा दृष्टम यथानुमितम यथाश्रुतम तथा वांग मनश्चेति। सत्य का थोड़ा और डिफाइन किया योग दर्शन में, स्पीच एंड माइंड कॉरेस्पेंडेंस टू व्हाट हैज बीन नोन बाय मीन्स ऑफ द सेंसेस, बाय मीन्स ऑफ इन्फेरेंस एंड बाय वर्ड टेस्टिमोनी एज सच। ये क्या चीज है? सत्य को जानने के लिए हमारे यहां जो जो वैदिक फिलोसफी है, जो हिंदू फिलोसफी है, जो छह तरह के अलग अलग फिलोसफीज हैं, उसमें अलग अलग नंबर्स के उन्होंने कुछ मीन्स फिक्स किया है जिसको प्रमाण कहते हैं। जैसे पतंजलि तीन मानते हैं, तीन मीन्स मानते हैं सत्य को परखने के लिए। फर्स्ट उन्हें डायरेक्ट जो नॉलेज आपको अपने अपने सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होता है। जैसे आपने देखा ये घड़ी है, घड़ी में 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, तो ये पहला ज्ञान जानने का ये पहला तरीका है। मैं आपको देख रहा हूं अपने आंखों से, आप मेरी बात को सुन रहे हैं कानों से, आपको ठंड लग रहा है, आपके स्किन से पता लग रहा है आपको, वगैरह वगैरह। आपको आम मीठा लग रहा है या खट्टा लग रहा है, आप जीभ से पता कर रहे हैं। ये जो ज्ञान हो रहा है इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। दूसरा ज्ञान पर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है लाइफ में जिसकी सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, उसको हम अनुमान कहते हैं, इन्फेरेंस कहते हैं। ऐसा ज्ञान जो हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं है, पर ऐसा हम अनुमान करते हैं। जैसे यहां जितने लोग बैठे नहीं, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनके मां बाप हैं। मतलब अभी जिंदा है नहीं है अलग बात है, मतलब उनके कोई ना कोई मां बाप थे या हैं। हमने तो देखा नहीं सबके मां बाप को, पर कैसे आप कह सकते हो कि सबके मां बाप हैं या थे? इसी को हम अनुमान कहते हैं। जब दो वस्तुओं में जो रिलेशन है वो परमानेंट रिलेशन के रूप में प्रूफ हो जाए, फिर ऐसा कोई भी वस्तु को देखकर जो आप ज्ञान करेंगे वो सच्ची होगा। जैसे आग पर अगर पानी आप रखते हैं तो पानी गर्म होता है, कभी भी आप आग पर पानी रखेंगे पानी गर्म होगा। तो ये रिलेशन क्या प्रूफ हुआ कि आग पर पानी रखने पर पानी गर्म होता है। अगर कहीं भी पानी आपको गर्म मिले तो इसका मतलब है कि उसके आसपास आग है। आग किसी फॉर्म में हो, वो हीटर के रूप में हो, आग के रूप में हो, क्योंकि ये विश्व का नियम है कि कोई भी प्राणी पुरुष और स्त्री के मिलन के बिना हो ही नहीं सकता। वो मिलन आप आजकल के वो क्लोनिंग सिस्टम से, वो उसे टेस्ट ट्यूब के सिस्टम से करें या किसी भी सिस्टम से, तो इसीलिए संसार में जो भी प्राणी है उनके कोई ना कोई पिता रहे होंगे या माता रहे होंगे। किसी भी वस्तु को जब आप देखते हैं आप कहते हैं इसका कोई बनाने वाला जरूर है। ये कपड़ा है, सुई है, कागज है, चश्मा है, कंप्यूटर है, कुछ भी आप देखते हैं उसका कोई बनाने वाला जरूर है। कैसे आप कह सकते हैं कि ये पंखा का बनाने वाला कोई जरूर है? क्योंकि दुनिया में कोई भी वस्तु तब तक नहीं होता जब तक उसको कोई बनाने वाला ना हो। इसको हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। दुनिया में ज्यादातर ज्ञान हमें इसी से होता है। तीसरा प्रमाण है, तीसरा जो टूल है वो वर्ड टेस्टिमोनी, शब्द प्रमाण। आपको कैसे पता कि भारत 1000 साल तक गुलाम था? आपको कैसे पता अब्राहम लिंकन यहां के प्रेसिडेंट थे? यह आपने किताबों से जाना, यह आपने सुनकर जाना, टीवी देख के जाना। और जो खत ये हमारे लाइफ में ज्यादातर जो सच्चाई का ज्ञान ये वर्ड टेस्टिमोनी से आता है। जितना हम एजुकेटेड होते जाते हैं हमें प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्यादा ये शब्दों पर भरोसा करना पड़ता है। पर यकीन मानिए दुनिया में ये शब्द, क्योंकि शब्द पर ही ज्यादा यकीन करते हैं लोग, तो शब्द में ही ज्यादा घपलेबाजी होती है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा शब्द प्रमाण जो वर्ड टेस्टिमोनी है वो हमेशा रिलायबल होना चाहिए। ये आपका और हमारा काम है पता करना कि रिलायबल है कि नहीं है। अगला एक मिनट में समाप्त करते हैं, थोड़ी सी हिंट्स दे करके फिर आगे इसकी लंबी चर्चा करेंगे नेक्स्ट ईयर। जैसे पहले हमने कहा कुछ भी आप करें उसके जड़ में उसकी रूट में अहिंसा आनी चाहिए। तो इस सच्चाई को थोड़ा और डिफाइन करते हैं पतंजलि, परत्र स्वबोध संक्रांतये वागुक्ता। अब हम बोलते क्यों है, हम बोलते हैं हमारे अंदर जो थॉट्स हैं जो विचार हैं उसको दूसरों तक ट्रांसफर कर सके, बता सके, वो जाए। पर उस ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रोसेस है वो अनेस्ट होना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं देखो वो जो सत्य का मतलब ये सिर्फ इतना नहीं कि सच जो आपके विचार है वो बता देना, उसमें तीन तरह के क्लॉजेस हैं। नंबर वन, इफ इट इज नॉट डिसेप्टिव इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड इट शुड नॉट बी बैरन इन नॉलेज। डिसेप्टिव क्या है, छोटी सी बात के खत्म करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसकी चर्चा करें। महाभारत में जब लड़ाई चल रही थी दोनों की तो द्रोण तब सेनापति थे, कमांडर थे, और वो भीष्म के बाद उनका नंबर टू सबसे ज्यादा पावरफुल थे, भीष्म मर चुके थे। तो पांडवों को द्रोण को हराना मुश्किल था, वो तो एक तो उनके गुरु भी थे टीचर भी थे। कृष्ण को अब जो लड़ाई में जाता है ना वो सिर्फ ऑफेंसिव नहीं, उसको डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों वे अपनानी पड़ती है, स्ट्रेटेजी भी अपनानी पड़ती है, डिप्लोमेसी भी करनी बहुत जरूरी होती है। तो कृष्ण ने पता किया कि द्रोण का वीकनेस क्या है, तो उनको पता चला कि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं, उनका नाम है अश्वत्थामा, और उन्होंने ये प्रॉमिस कर रखा है, वो उनके लाइफ में शर्त है कि मेरा बेटा अगर जिंदा नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। अश्वत्थामा अपने आप में बहुत बड़ा योद्धा है, उसको मारना मुश्किल है, द्रोण नहीं मरे पांडव हार जाएंगे। तो उन्होंने एक पांडवों ने एक एक स्ट्रेटेजी अपनाई, भीम का एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, द्रोण का बेटे का नाम भी अश्वत्थामा, भीम के एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा। उस अश्वत्थामा हाथी को मरवा दिया गया और हल्ला मचा कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया द्रोण के सामने, क्योंकि द्रोण ने यह प्रॉमिस किया था अगर अश्वत्थामा मर जाए जिस दिन मैं उस दिन लड़ाई करना छोड़ दूंगा, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहूंगा। तो द्रोण के सामने चिल्ला चिल्ला कर पांडवों ने बोला अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मर गया। पर द्रोण को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनको पता था उनका बेटा बहुत बहुत योद्धा है, वो आसानी से नहीं मरने वाला। उन्होंने बोला मैं बस कंफर्म अगर करूंगा जो सत्य जो सच्चा है बहुत बड़ा अनिष्ट है मैं उसी से पूछूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े अनिष्ट माने जाते थे, वो जिंदगी में कभी नहीं झूठ बोलते थे, उनसे पूछूंगा। पांडवों ने युधिष्ठिर से रिक्वेस्ट किया कि आप बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया। उन्होंने बोला मैं कैसे बोल दूं, वो तो मरा नहीं है। बोले अच्छा हाथी तो मरा है ना, हाँ मरा है, तो ये बोल दो अश्वत्थामा मरा, पर हाथी मरा या घोड़ा वो मरा ये नहीं पता है, आदमी मरा ये नहीं पता, नहीं ये भी नहीं बोल सकता, मैं तो सत्य बोलता हूं, मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। डिसेप्टिव कंफ्यूज्ड और वैरन नॉलेज तीनों नहीं होना चाहिए, युधिष्ठिर इसको समझते थे। तो पांडवों ने कहा अच्छा ठीक है आप लाइन को ऐसे बोलो, अश्वत्थामा मरा हाथी या आदमी ये नहीं पता, अश्वत्थामा हतो नरोवा वानरो, पर ठीक है, पर पहला लाइन आपको बोलना पड़ेगा अश्वत्थामा मरा। युधिष्ठिर ने द्रोण के सामने चिल्ला के बोला अश्वत्थामा हतो मरा, और पांडवों की तरफ से जोर जोर से नगाड़े बजने लगे, अगली लाइन उनको सुनाई नहीं दिया, द्रोण ने तलवार छोड़ दिया और अर्जुन ने उसको मार डाला। इसका परिणाम हुआ युधिष्ठिर ने पूरी जिंदगी में तीन बार झूठ बोला था, पूरी जिंदगी में तीन ही बार झूठ बोला था, तीन ही बार। उसके कारण कहते हैं कि अश्वत्थ युधिष्ठिर को जो स्वर्ग प्राप्त होना था उनको बहुत दिनों तक हिमालय के पहाड़ों में दुख कष्ट भोगना पड़ा क्योंकि तीन बार झूठ बोले थे। युधिष्ठिर ने सच बोला था बट विथ डिसेप्टिव वे। उसको पता था जो मैं बोल रहा हूं जो होने वाला है वो एक तरह के लोगों को चीट करने के लिए। तो सच्चा आदमी भी सच बोलते समय अगर लोगों को घुमाने के चक्कर में रहे तो भी वो सच सच नहीं झूठ होगा। बाकियों की चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और सत्य बोलने में क्या क्या चीजों की और ध्यान रखनी है और सच कितना खतरनाक है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।